लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि हम सब लोग सृष्टि की रक्षा के प्रति समर्पित युवाओं में आनंदित होते हुए सरल और पर्यावरण की दृष्टि से धारणीय जीवन शैली हेतु सही विकल्पों को चुनने का साहस प्राप्त करें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं रविवार ये आराधना विधि चिंतन भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, परिवार में कलह के कारण क्या है? समाज में मानव शांति और अमन चैन से क्यों रहने में असमर्थ है? जातियों और विभिन्न भाषा भाषियों के मध्य तनाव और तकरार की स्थिति क्यों देखने को मिलती है? देशों में युद्ध की स्थितियां क्यों बनी हुई हैं? इसका एक मूल कारण यही है कि मानव के जेहन में एक चाह है, जिसके फलस्वरूप वह अपने को समाज में सबसे आगे रखने की चाह रखता है। मानव के रूप में हम सभी अपने को स्थापित करने की चाह रखते हैं। हम सबों में एक पहचान पाने की चाह है, जिसके लिए हम जी तोड़ मेहनत करते हैं। मानव के जीवन की इस चाह का संबंध उसके मनोवैज्ञानिक दशा का हाल व्यक्त करता है, जहां हम सभी समाज में एक अच्छा नाम प्रतिष्ठा को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। कोई भी माता पिता अपने में कितने भी बुरे क्यों ना हो, लेकिन उनकी चाह यही रहती है कि उनकी संतान अपने में भला और नेक व्यक्ति बने। श्रोताओ, वर्ष के 25वें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए पाठों में मानवीय आकांक्षा की विषय वस्तु उभर कर आती है। यह महत्वाकांक्षा यीशु के शिष्यों में भी बनी थी, जो उनके बीच एक तरह से तनाव और वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न करता है। आइए हम सुसमाचार में इस वचनों को सुनते हुए अपने में इस बात की आत्म परख करें कि हम अपने में कितने महत्वाकांक्षी हैं। हमारी महत्वाकांक्षा हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या क्या कराती है। अपनी महत्वाकांक्षा में कहीं हम अपने मानवीय गुणों के खिलाफ जीवन यापन तो नहीं करते हैं?
वे वहाँ से चलकर गलीलिया पार कर रहे थे। ईसा नहीं चाहते थे कि किसी को इसका पता चले, क्योंकि वह अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। ईसा ने उनसे कहा, मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और मार डाले जाने के बाद वह तीसरे दिन जी उठेगा। शिष्य यह बात नहीं समझ पाते थे, किंतु ईसा से प्रश्न करने में उन्हें संकोच होता था। वे कफरनहूम आए। घर पहुंचकर ईसा ने शिष्यों से पूछा, तुम लोग रास्ते में किस विषय पर विवाद कर रहे थे? वे चुप रह गए, क्योंकि उन्होंने रास्ते में इस पर वाद विवाद किया था कि हम में सबसे बड़ा कौन है। ईसा बैठ गए और बारहों को बुलाकर उन्होंने उनसे कहा, जो पहला होना चाहता है वह सबसे पिछला और सबका सेवक बने। उन्होंने एक बालक को शिष्यों के बीच खड़ा कर दिया और उसे गले लगाकर उनसे कहा, जो मेरे नाम पर इन बालकों में से किसी एक का भी स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह मेरा नहीं बल्कि उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है।
श्रोताओ, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें इस हकीकत को स्वीकारने में मदद करे कि हम सभी अपने में विभिन्न तरह की महत्वाकांक्षाओं से ग्रसित हैं, जो दूसरों की परवाह करने के बदले हमें आत्म केंद्रित कर देता है, जहां हम अपने हित अपने लाभ और अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु सारी चीजों को पूरा करते हैं। श्रोताओ, प्रज्ञा ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमें दुनिया की वास्तविक परिस्थिति को प्रस्तुत करता है। दुनिया विधर्मियों की जगह है, जहां सत्य और ईमानदारी का अनुसरण करने वालों को जीवन से हाथ धोना पड़ता है। वहीं विधर्मी फूलते फलते हैं। विधर्मी धर्मात्मा के लिए फंदा लगाते हैं, क्योंकि वह विधर्मियों के बुरे कार्यों का विरोध करता और उन्हें खुली चुनौती देता है। धर्मात्मा अपने निष्ठापूर्ण जीवन के कारण विधर्मियों के बुरे आचरणों का विरोध करता और संहिता भंग करने वालों को फटकारता है। विधर्मी दुष्टता में धर्मात्मा की परीक्षा लेते और उसे प्रताड़ित करने की परियोजनाएं बनाते हैं। वे धर्मात्मा को मार डालने की सोचते हैं, यही कहते हुए कि यदि वह ईश्वर भक्त है तो ईश्वर उसे अत्याचारों से बचाएगा। श्रोताओ, दुनिया की रीत आज यही है, जो बुराई करते दुनिया उन्हीं की जान पड़ती है। वहीं एक न्यायी और ईमानदार व्यक्ति को दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर होना पड़ता है। दुनिया की इस रीत के कारण यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, तुम इस दुनिया के नहीं हो, इसलिए दुनिया तुमसे बैर करती है। श्रोताओ, प्रेरित संत याकूब के ग्रंथ से लिया गया आज का दूसरा पाठ हमारे लिए दुनिया में व्याप्त बुराइयों का कारण प्रस्तुत करता है। प्रेरित कहते हैं कि आज दुनिया में ईर्ष्या और स्वार्थ के कारण बुराई भरी पड़ी है। मानव में लड़ाई झगड़ा इसलिए व्याप्त है क्योंकि मानव वासना से ग्रसित अपने जीवन को जीता है। उसमें विभिन्न तरह की इच्छाएं हैं जिसकी वह पूर्ति करना चाहता है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति में असफल वह अपने में क्रोधित होता और उस क्रोध के कारण वह अपनी उतावला में दूसरों की हत्या तक कर देता है। प्रेरित कहते हैं कि हमें चीजें प्राप्त नहीं होती हैं क्योंकि हम प्रार्थना नहीं करते हैं, और हम प्रार्थना करते भी हैं तो उन चीजों की मांग करते जो हमारी स्वार्थ सिद्धि होती हैं। हम उन चीजों की मांग करते हैं जिनके द्वारा हम अपनी वासना की पूर्ति कर सकें, और यही कारण है कि हमारे द्वारा मांग की गई चीजें हमें नहीं मिलती हैं। श्रोताओ, यदि हम चीजों की मांग ईश्वर की इच्छा पूरी करने हेतु करें तो निश्चित ही हमें वे सारी चीजें मिलेंगी जिनकी हम मांग करते हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमारी सृष्टि अपने कार्यों और योजनाओं की पूर्ति हेतु की है। ईश्वर की योजना और इच्छा हमारे लिए यही है कि हम सच्चा और पवित्र जीवन यापन करें, क्योंकि वे स्वयं अपने में पवित्र और सत्यनिष्ठ हैं। श्रोताओ, सुसमाचार में हमने यीशु को अपने दुख भोग की चर्चा करते सुना। यीशु का दुख भोग और क्रूस मरण इसलिए हुआ कि उन्होंने सत्य और जन कल्याण हेतु न्याय का साक्ष्य दिया। उन्होंने उन फरिसियों और शास्त्रियों को चुनौती दी जो दिखावा करते और संहिता के नियमों को नाम मात्र पूरा करते थे। यीशु ने अपने समाज के यहूदियों, फरिसियों और शास्त्रियों को उनकी पाखंडता के लिए खुले रूप में चुनौती दी और उन्हें फटकारा। पिता द्वारा यीशु को दी गई प्रेरिताई यही थी कि वे पाप और बुराई को दूर करते हुए न्यायपूर्ण ईश्वरीय राज्य की स्थापना करें। उन्होंने अपने इस कार्य को निष्ठा में पूरा किया और इस भांति उन्होंने अपने निष्ठापूर्ण कार्यों के लिए पाप का शिकार होना पड़ा। यीशु अपने पिता के द्वारा दिए गए कार्यों का परिणाम अच्छी तरह जानते थे, और इसी कारण उन्होंने अपने चेलों से अपने दुख भोग, क्रूस मरण और पुनरुत्थान का जिक्र किया। लेकिन चेले यीशु की बातों को समझने में नाकामयाब रहे क्योंकि वे अपने ही महत्वाकांक्षा में डूबे और उलझे हुए थे। उन्हें इस बात की चिंता थी कि उनके बीच सबसे बड़ा कौन है। श्रोताओं, यीशु ख्रिस्त के मनोभाव अपने में दुनियावी मनोभावों से एकदम भिन्न है। हमारे सोचने विचारने के तरीके ईश्वर के तरीके से एकदम अलग हैं। यीशु न केवल अपने शिष्यों के मनोभावों से अवगत हैं, बल्कि वे हमारी सोच, हमारी महत्वाकांक्षाओं से भी पूर्ण रूपेण वाकिफ हैं। अतः वे अपने चेलों के बीच एक बालक को लाते हुए उन्हें उनकी तरह बनने की चुनौती देते हैं। आइए हम मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त से माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा निवेदन करें कि वे हमें नम्रता और दीनता के गुणों से पोषित करें, जो हमें अपने लिए नहीं अपितु दूसरों के लिए जीने हेतु प्रेरित करता है।
जीवन जिसने दिया, ये जीवन है उसका।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने विश्व मज्जा या मैरो दान दिवस की याद दिलाते हुए दूसरों को दान करने का प्रोत्साहन दिया। उन्होंने 18 सितंबर को ट्वीट संदेश में लिखा, हमारे दान से दूसरे बीमार और पीड़ित लोगों का जीवन एवं स्वास्थ्य आगे बढ़ सकता है और आशा एवं जीवन की संस्कृति को सुदृढ़ करने में मदद मिल सकता है। समाज को एकात्मकता के इन ठोस भावों एवं उदार प्रेम की आवश्यकता है, ताकि इस समझदारी को सुदृढ़ किया जा सके कि जीवन पौत्र है। अपने दूसरे ट्वीट संदेश में संत पापा ने सृष्टि के मौसम की याद दिलाते हुए लिखा, उम्मीद हमें इस बात को जानने के लिए प्रेरित करता है कि बाहर निकलने के लिए हमेशा एक रास्ता है, कि हम हमेशा अपने कदमों को पुनः दिशा दे सकते हैं, कि हम अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा कुछ उपाय कर सकते हैं। संत पापा फ्रांसिस ने शनिवार 18 सितंबर को रोमधम प्रांत के विश्वासियों से मुलाकात की तथा उन्हें पौत्रात्मा को सुनने और एक साथ चलने का प्रोत्साहन दिया। संत पापा ने कहा कि हमें पौत्रात्मा को सुनना है, जैसा कि हम प्रकाशना ग्रंथ में पाते हैं, जिनके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। उन्होंने कहा, कान देना सुनना पहली प्रतिबद्धता है, यह ईश्वर की आवाज को सुनना है, उनकी उपस्थिति को पहचानना है, उनके पार होने एवं जीवन की सांस को महसूस करना है। नबी एलिया ने पहचाना कि ईश्वर हमेशा विस्मय के ईश्वर है, जो पार होने और अपने आप को महसूस कराने में भी विस्मित करते हैं। वे न तो आंधी में, न भूकंप में और न आग में उपस्थित थे, बल्कि मन समीर में उपस्थित थे। ईश्वर इसी तरह मन समीर में बोलते हैं, जिसके लिए हमें अपने कानों को तैयार रखने की जरूरत है। संत पापा ने कहा कि यह धर्म प्रांत की कलीसिया के सिनट का पहला चरण है। यही कारण है कि मैं आपके धर्मदर्श के रूप में यहाँ हूँ, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि रोम धर्म प्रांत इस यात्रा के लिए प्रतिबद्धता के साथ समर्पित हो। अक्टूबर 2021 से अप्रैल 2022 तक आयोजित आगामी सिनट की विषय वस्तु है, एक सिनोडल कलीसिया के लिए एकता सहभागिता मिशन। संत पापा ने कहा कि सिनट या धर्माध्यक्ष धर्म सभा कलीसिया शास्त्र पर सभा नहीं है, न ही कोई फैशन है, ना नारा अथवा सभा में नए शब्द का प्रयोग। इसके विपरीत सिनोडालिटी कलीसिया के स्वभाव को व्यक्त करता है, इसकी आकृति, इसकी शैली और इसके मिशन को व्यक्त करता है। संत पापा ने सिनट के लिए प्रेरित चरित्र में वर्णित आरंभिक कलीसिया का उदाहरण दिया। सिनट का अर्थ बतलाते हुए संत पापा ने कहा कि सिनट शब्द में वह सब कुछ है जिससे हमें एक साथ चलने के लिए समझने की जरूरत है। प्रेरित चरित्र की किताब में यात्रा की कहानी यरूशलेम से शुरू होकर समारिया पार होते हुए यहूदिया, सीरिया, एशिया माइनर और ग्रीक की ओर आगे बढ़ी और अंत में रोम पहुंची। यह रास्ता उस कहानी को बयां करता है जिस पर ईश्वचन और इसे सुनने वाले एवं उस पर विश्वास करने वाले लोग एक साथ चलते हैं। इसमें हर एक मुख्य पात्र है और कोई अतिरिक्त व्यक्ति नहीं है। अधिकार ईश्वर की वाणी सुनने से आता है। संत पापा ने रोम धम्म प्रांत के सभी विश्वासियों को एक साथ चलने एवं एक दूसरे की चिंता करते हुए आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दिया।
संत पापा फ्रांसिस ने शनिवार 18 सितंबर को नाबालिगों की सुरक्षा के लिए गठित परम धर्म पीठीय आयोग एवं मध्य और पूर्वी यूरोप के धर्माध्यक्षीय सम्मेलनों द्वारा आयोजित बैठक के प्रतिभागियों को वीडियो संदेश दिया। अभिवादन कर संत पापा ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वे नाबालिगों के यौन शोषण के संकट पर कलीसिया द्वारा प्रदान की जा रही प्रतिक्रिया पर विचार करने के लिए एकत्रित हुए हैं। संत पापा ने कहा कि उन्होंने फरवरी 2019 में रोम में एकत्रित हुए विश्व के धर्माध्यक्षीय सम्मेलनों के धर्माध्यक्षों को प्रोत्साहित किया था कि पीड़ितों की भलाई को संस्थागत कलीसिया की प्रतिष्ठा के लिए गुमराह करने वाली चिंता के पक्ष में दरकिनार नहीं किया जा सकता। इसके बजाय केवल उन दुष्ट प्रथाओं की सच्चाई का सामना करने और पीड़ितों एवं बचे हुए लोगों से क्षमा मांगते हुए कलीसिया अपना रास्ता खोज पाएगी जहां इसे एक बार फिर से उन लोगों के लिए स्वागत और सुरक्षा के स्थान के रूप में भरोसा किया जा सकता है। मैं आपको इन महत्वपूर्ण चर्चाओं में पीड़ितों के रोने को सुनने और एक दूसरे के साथ और समाज के साथ खुद को समर्पित करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, क्योंकि वे वास्तव में मध्य पूर्वी यूरोप की कलीसिया के भविष्य और ख्रिस्तियों के दिल को छूते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है। हमारी त्रुटियां और हमारी असफलताओं की पहचान निश्चित रूप से हमें कमजोर और नाजुक महसूस करा सकती है, लेकिन यह अनुग्रह का क्षण भी प्रस्तुत करता है, अपने आप को खाली करने का क्षण जो प्रेम और पारस्परिक सेवा के नए क्षितिज खोलता है। यदि हम अपनी गलतियों को पहचानते हैं तो हमें डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि यह स्वयं प्रभु ही है जिन्होंने हमें इस मुकाम तक पहुँचाया है। संत पापा ने सभी से उदारता के साथ दुर्व्यवहार के शिकार लोगों की सेवा में प्रभु के विनम्र साधन बनने का आग्रह किया। उधर संयुक्त राज्य अमेरिका के धर्माध्यक्षों ने आगामी बजट समाधान विधेयक में गैर दस्तावेज आप्रवासियों को वैध बनाने के नए आप्रवासन प्रावधानों को शामिल करने के लिए अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त किया है। $3.5 ट्रिलियन की राशि के प्रस्तावित बिल का उद्देश्य देश के सामाजिक सुरक्षा जाल का विस्तार करना है। सदन न्यायपालिका समिति ने 13 सितंबर को नवीनतम बिल पारित किया। बुधवार को यूएससीसीबी के प्रवासन समिति के अध्यक्ष धर्माध्यक्ष मारियो डोरसन विले ने इसे एक महत्वपूर्ण कदम और कई परिवारों के लिए स्वागत मील का पत्थर कहा। उन्होंने याद किया कि दशकों में संयुक्त राज्य अमेरिका के धर्माध्यक्ष ऐसे सुधारों के समर्थक रहे हैं जो एकीकरण और पारिवारिक एकता को बढ़ावा देते हैं। अपने बयान में धर्माध्यक्ष ने कहा कि देश समाज के इन सदस्यों को हाशिए पर ढकेलने में नहीं टिक सकता है, खासकर जब हम एक साथ अपनी सामूहिक भलाई के लिए उनमें से कई पर निर्भर करते हैं। धर्माध्यक्ष डोरसन विले ने कांग्रेस को बिल पारित करने के लिए अपने आह्वान को दोहराया जो हमारे समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों की मदद करता है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।